अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन परमानंद के ये पुनीत क्षण जिसमें हम और आप श्री प्रेमपुरी आश्रम के सुंदर भवन में महापुरुषों के परम पुरुषार्थ स्वरूप प्राप्त ये सुंदर स्थान जहां पर हम अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का शास्त्रों के माध्यम से चिंतन करते हैं, महापुरुषों का भगवान का अतिशय धन्यवाद कि हमारा आपका मन पूर्ण रूपेण सत्संग में इस सुंदर विचारधारा में अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य की ओर लगता है, हमारा तन यहां पर आता है तो ये दोनों पवित्र मन और बुद्धि शरीर के संग पवित्रता को प्राप्त होते हैं। तो बारंबार धन्यवाद करते हुए वर्तमान में हमारा जो है विषय श्रीमद् भगवद गीता जिसको भगवान की वाणी कहा जाता है, ऐसा सुंदर ग्रंथ जिसमें हम लोग षोडश अध्याय सोलहवें अध्याय में दैवी संपदा और आश्रित संपदा का जो अध्याय कहा जाता है दैवी संपदा के ऊपर विचार कर रहे हैं और तप का हम लोगों ने जो है मंथन किया श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कि किस प्रकार से शारीरिक तप मानसिक तप और वाणी का तप ये तीनों तप जो है जब तीन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। सात्विक जब इन्हीं तीनों तपस्याओं को ग्रहण करता है तो उसको भगवत प्राप्ति होती है और जब उसी को राजस पुरुष तपस्या का माध्यम बनाता है तो उसको सांसारिक जिसको हम लोग कंचन कामिनी कीर्ति या अन्य जो भी भौतिक पदार्थ हैं उसकी प्राप्ति होती है तपस्या के परिणाम स्वरूप। इसी प्रकार से जब यही तीनों तप जिसको हम लोग शारीरिक तप मानसिक तप और वाणी का तप कहते हैं जब यही तपस्या तामसी पुरुष करता है ना, तामस हृदय जिसका हृदय पूर्णतया कलुषित है वही जल है जिस समय तीन वृत्तियों को जल प्राप्त हो जाता है बिल्कुल निर्मल जल हो प्रातःकाल तो वो बिल्कुल आर पार साफ दिखाई देता है, ये सात्विक पुरुष के लक्षण है। उसके बाद उस जल में थोड़ी सी जो है बूंदें गिर जाएं, अगर वृष्टि हो रही हो दो चार बूंदें गिरे तो थोड़ा सा छिछला हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ा मल घुल जाता है तो वो राजस स्थिति है और जब पूरा मटमैला हो जाए उथल पुथल हो जाए उस जल में तो वो तामस हृदय जल वही है वही अंतःकरण है और वही व्यक्ति है। एक ही अंतःकरण में तीन वृत्तियां स्थित हैं। आपका मन निर्मल हो गया तो आप सात्विक हैं, अगर आपका मन संसार में भटक रहा है तो राजस हैं और बिल्कुल ही किसी भी तरफ नहीं ना संसार में ना भगवान में किसी भी स्थिति का वो आनंद नहीं लेता उसको तामसी पुरुष कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तामस पुरुष के जब ये तप तामस पुरुष करता है तो उसकी क्या स्थिति है। मूल ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपा परस्योत्साधनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। जिस समय मूल भाव से ग्रसित होकर है ना, क्योंकि मूल भाव कहते हैं पूर्णतया मूल भाव से ग्रसित होकर है ना, जिसके अंदर कोई सोच समझ नहीं है और वो तपस्या करना प्रारंभ कर देता अपने अनुसार, चाहे वो गुरु की सेवा हो या मानसिक तप हो है अंतःकरण से, तो उसके बाद जो है वाणी का तप है ना। देखा आपने कभी किसी की वाणी ऐसी होती है महाराज कोयल की तरह मीठी और किसी की वाणी ऐसी होती है कभी उसके मुख से सुंदर शब्द निकलने का नाम नहीं लेते है ना, तो ऐसा ये विशेष वाणी का तप माना गया। तो मूल ग्राहेण जब मूल व्यक्ति इन्हीं तीनों तपों को करता है मन वाणी और शरीर से तो सबसे पहले तो अपने मन को दुखी करता है अपनी वाणी को दुखी करता है अपने शरीर को दुखी करता है ना, क्योंकि जो मूल व्यक्ति है वो किसी को प्रसन्न नहीं देख सकता। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मूढ़ व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो किसी को भी प्रसन्न चित्त नहीं देख सकता। उसको सब कैसे दिखाई देने चाहिए? दुखी दिखाई देने चाहिए। वो किसी की प्रसन्नता को बर्दाश्त नहीं करता, और जब दूसरे को प्रसन्न देखता है तो उनको दुखी करने के लिए, उनको सताने के लिए तरह तरह के मन में जो है देखो वो तीनों तप प्रारंभ हो जाते हैं। अपने शरीर को कष्ट देता जिससे दूसरे को कष्ट मिले, अपनी वाणी को कष्ट देता जिससे दूसरे को कष्ट मिले, अपने जो है मन को कष्ट देता यानी बुरे विचारों से अपने मन को कष्ट देता जिससे दूसरे को कष्ट मिले, ये उसके तप की स्थिति है। वो भी अपने शरीर को तपा रहा है महाराज, वो भी अपने मन को तपा रहा है, वो भी अपनी वाणी को तपा रहा है, लेकिन कैसे? दूसरे को पीड़ा देकर, अपने आप को पीड़ा देकर। कहते हैं ऐसा जो अनिष्ट उस साधनार्थम, भगवान कहते हैं दूसरे का परस्य, दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा से जो तप किया जाता है वो भी तप। ये हमारे सबसे बड़े उदाहरण ही है, तामस तप के सबसे बड़े उदाहरण है रावण, कुंभकर्ण है, जो हिरण्यकश्यप, इन्होंने तप ही दूसरे को सताने के लिए किया, केवल अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। बस मैं सुखी रहूं, बाकी सबको क्या रहना चाहिए? दुखी रहना चाहिए। ये तामसी भाव है, और सात्विक भाव कहता है मैं भले दुखी हो जाऊं बाकी सबको सुखी रहे, ये सात्विक भाव है। जो अपने को दुखी रखकर बाकी सबको सुखी करता है, तप करता है, वो सात्विक तप, निर्मल तप कहलाता है। और जो अपने आप को सुखी करके दूसरे सबको दुखी करता है वो क्या कहलाता है? तो स्वयं आपको आत्मविवेचन करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे यहां शास्त्रों में एक दो नहीं, बहुत सारे, एक बहुत साधारण सा उदाहरण आपने अक्सर कथाकारों के माध्यम से सुना होगा। तप का सीधा सा अर्थ, तपस्या का मतलब, यदि आप अपने धर्म के पालन में पीछे नहीं हटते हैं, है ना, जैसे भीष्म पितामह ने अपने पिता को वचन दे दिया कि जब तक मेरा शरीर रहेगा मैं हस्तिनापुर की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। ये वचन दे दिया, और इसके परिणाम स्वरूप अपने आराध्य से ही भीष्म पितामह को क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। उसमें भी वो पीछे नहीं हटे। ये धर्म पालन कहलाता है महाराज। क्या कहलाता? हाँ, ये धर्म पालन का चरम है कि अपने आराध्य से भी महाराज दो दो हाथ करने में भीष्म पितामह पीछे नहीं हटे। इसी प्रकार से कर्ण की स्थिति देखी जाती है, दान रूपी स्वधर्म पालन। उसने जीवन में व्रत ले लिया कि मेरे सामने कोई भी याचक आएगा मैं उसको किसी भी स्थिति में खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, और मरते दम तक उसने अपने इस धर्म का क्या किया? पालन किया। उसमें उसने ये निर्णय नहीं लिया था कि महाराज इसको ही दान देना है या इसको नहीं, जो भी याचक आएगा, ये नियम था उसका, कोई भी आए। और स्वयं भगवान ने युधिष्ठिर को भेजा था, बोले बारिश के समय जाओ देखो जाके कर्ण अपने स्वधर्म का पालन कैसे करता है। तो वहां पर देखा गया कि महाराज कर्ण ने जो है जब भेजा, बोले जाओ हमको हवन करने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए और सूखी लकड़ी चाहिए। तो कहते हैं जब युधिष्ठिर वहां पर गए तो कर्ण ने कहा इस समय सूखी लकड़ी तो मिलनी संभव नहीं है, लेकिन मेरा पलंग जो है वो चंदन का है। किसका है? हाँ, तो उसने देखते ही देखते जब तक उनके हाथ को पकड़ते तब तक तो कुल्हाड़ी मंगा के कर्ण ने अपने सारे पलंग को क्या कर दिया? काट दिया। जरा कल्पना कीजिए, क्या हमारे आपके अंदर ऐसी हिम्मत है? चंदन का पलंग हो तुम्हारा तो बात ही छोड़ दो, साधारण दो रुपए के पलंग को भी हम काटने को तैयार नहीं होंगे। तो स्वधर्म पालन रूपी तप बड़ा कठिन है। हमारे यहां जो है महात्मा लोग सत्संग में उदाहरण देते हैं कि एक जो है तपस्वी जंगल में है, जब नया नया वैराग्य होता है तो ऐसी हमारी भी यही अवस्था थी महाराज, जब घर छोड़ा तो यही मन होता था कि जंगल में जाके घनघोर तप किया जाए और कोई बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की जाए, ऐसा मन में विचार आता है ना, सिद्धियां हो हमारे पास, नया नया वैराग्य जब होता ना जंगल में जाकर है। तो वैसे ही जो है एक महात्मा जब, तो इसीलिए विवेक चाहिए है ना, सिद्धियों में आकर्षण होता है ना, तो साधारण मनुष्य को सिद्धियां ही अच्छी लगती हैं कि मैं इच्छा करूं और वो चीज मेरे हाथ में आ जाए। क्यों भाई, सब चाहते हो कि नहीं चाहते? आप इच्छा करें और वो चीज आपके तुरंत हाथ में आ जाए। लेकिन ये सब हमारे यहां क्या माना जाता है, ये सब महाराज परमेश्वर के मार्ग में बाधक माने जाते हैं, है ना। तो इसलिए तीन दिन भूखा रहना, देखो जो है तामसी हृदय और जो शुद्ध हृदय तप है, दोनों में क्या अंतर है। जो हमारे यहां कर्तव्य पालन भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण ने किया, गीता भी सुनाई और अर्जुन का रथ भी यहां का, और हम तो महाराज दो श्लोक आपको सुनाते हैं आपके ऊपर बैठ जाते हैं, बोले हा मैं ज्ञानी हूं और तुम सब ज्ञानी, ऐसा नहीं चलेगा महाराज, है ना। तो उस महात्मा ने जंगल में जाकर क्या किया, घनघोर तप किया महाराज, और ऐसा घनघोर तप किया था भूख प्यास, भगवान कहते हैं ना कर्षयंता मूण ग्राहण आत्मानो यत पीड़या, अपने आप को पीड़ित करके जो तप किया जाता है उसका जो फल मिलता है उसकी दशा देखिए। तो महाराज जब उसने घनघोर जंगल में जाकर तप किया तो इसका परिणाम ये हुआ कि उसको सिद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई। तो चंदन जो परम शीतल माना जाता है, जिसकी लकड़ी अगर उसमें भी अतिशय घर्षण किया जाए तो क्या उत्पन्न हो जाती है, अग्नि उत्पन्न हो जाती। तो उसी प्रकार से उस महात्मा ने जिस समय एकाएक एक दिन उसका जो है तप थोड़ा सा जो है ढीला पड़ा और उसने आंख खोली, आंख खोलते ही पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, और जैसे ही महात्मा ने उसकी ओर देखा तो वो चिड़िया जल करके नीचे गिर गई, ऐसा भयंकर तेज उसके अंदर तप का प्रकट हुआ हमारा। मैंने इतनी तपस्या कर ली कि मेरे देखते ही चिड़िया जल करके राख होके नीचे गिर गई, एकाएक अहंकार उदय हुआ हमारा, है ना। चलो अब जगत में चलकर मैं लोगों को अपने तप का क्या दिखाऊं, प्रभाव दिखाऊं, है ना। लेकिन महाराज भगवान ने कुछ ऐसी चीजें हमारे शरीर में बांध रखी हैं, जिसको कहते हैं नहीं, सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाही। बंदर की तरह हम नाचते हैं, भोलेनाथ कहते हैं इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ है, ये तो राम ने परमेश्वर ने जिसकी जो ड्यूटी लगा रखी है वो ड्यूटी क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। हमारी बोलने की ड्यूटी लगा दी, हम बोल रहे हैं, आपकी सुनने की ड्यूटी लगा दी, आप सुन रहे हैं। वास्तविकता में ना हम ज्ञानी हैं ना आप मूढ़ हैं, दुनिया में सब ज्ञानी हैं और सब अज्ञानी हैं। जिसको परमेश्वर मिल गया वो ज्ञानी, और जिसको नहीं मिला वो मूढ़। असली चीज तो माल वहां है महाराज, बाकी तो सब खाली देखने के नाटक हैं। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो इसीलिए हमारे यहां तरह तरह के संत बनाए गए, पढ़े लिखे भी बनाए गए और बिना पढ़े लिखे भी बनाए गए, क्योंकि वास्तविकता में कोई भी ना ज्ञानी है ना मूढ़ है, उस परम सत्य में सब एक रूप हैं, है ना। ये सब खाली भेद दृष्टि में दिखाई देता कि मैं ज्ञानी हूं तुम अज्ञानी हो, तुम फलाने हो मैं दिमाका हूं, ऐसा करना केवल अज्ञान में ही सिद्ध होता है, ज्ञान में कोई भी भेद नहीं रह जाता, है ना। तो जिस समय उस महात्मा ने जगत का प्रचार करने के लिए महाराज निकला तो भूख लगी, है ना, क्योंकि भूख प्यास से तो रहित तो हो नहीं सकता आदमी, जैसे ही अहंकार आता है तो वैसे ही भूख प्यास सताने लगती है। फिर महाराज जब आपको भूख लगेगी तो बताओ अच्छा दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ धर्म माना जाता, क्योंकि ब्रह्मचारियों को और भगवान जो है सन्यासियों को महात्माओं को भोजन कराने वाले कौन, गृहस्थ, है ना। अच्छा तीन दिन किसी महात्मा को जो है भोजन न कराओ, प्रेमपुरी में बुला लो, पांच दिन तक उसको क्या रखो, भूखा रखो, और पांचवें दिन का वो आओ महाराज और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की माला पहना दो, बोले बोलो क्यों भाई है, 1 करोड़ की माला पहना के उससे कहो बोलो महाराज आप वेद सुनाओ, बोलेगा मेरे शरीर में जानी नहीं है यार, है पांच दिन से भूखा मार दिया है अब मैं क्या बोलूंगा। तो इसलिए महाराज ये जो शरीर के भगवान ने नाटक बनाए ना, खाना पीना सोना जागना, तो जब तक ये पूर्ण नहीं होते तब तक आप बिल्कुल जो है अपने आप को सही अनुभव नहीं करते। तो महात्मा को भूख लगी महाराज, है ना, और भूख लगी तो सामने एक घर दिखाई दिया और जा करके उसने वहां पर आवाज लगा दी, पुराने जमाने में है ना, आवाज लगा दी सीधे, भिक्षाम दे, मुझे भोजन चाहिए। महाराज दो तीन बार आवाज लगाई और तपने तप का प्रभाव तो उसको मालूम ही था कि मैंने आंख खोली तो चिड़िया जल के राख हो गई। तीन बार आवाज लगाई, अंदर से जब कोई आवाज नहीं आई तो महाराज उसको गुस्सा आ गया, मतलब मैंने इतनी देर से चिल्ला रहा हूं रोटी के लिए कोई आवाज नहीं आती। तो अंदर से एक स्त्री की आवाज आई कि महाराज थोड़ी देर रुको, अभी आपको भोजन मिलेगा। बोले हैं, मुझे रुकना पड़ेगा, जानती हो मैं कौन हूं। फिर अंदर से आवाज आई, महाराज मैं वन की चिड़िया नहीं हूं जो जल के राख हो जाऊंगी। बोले हैं, बोले रोटी वोटी तो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुमको पता कैसे चला। वो स्त्री अपने सास ससुर को भोजन करा रही थी। बोले महाराज जब तक मेरे सास ससुर खा नहीं लेंगे तब तक मैं आपको भिक्षा देने वाली नहीं हूं। आपके महाराष्ट्र में एक मंदिर है ना, पंडरीनाथ का, पंडरपुर, आज भी भगवान अपनी कमर में हाथ रखकर क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने भक्त की दर्शन करने आए मेरे। और वो क्या कर रहा था, अपने माता पिता के सेवा कर रहा था, आज तक भगवान खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। बोलो, इसको कहते हैं निर्मल तप, जो सात्विक तप है, धर्म पालन तप है, और दूसरी तरफ कष्ट तप है महाराज। उस महात्मा ने पूछा, महाराज रोटी सोटी तो छोड़ो, भूख तो मेरी गई एक तरफ, अभी तुम ये बताओ तुमको कैसे पता चला कि जंगल में मेरे देखने से चिड़िया जल के राख हो गई। बोले महाराज मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो साधारण केवल एक गृहस्थ जीवन का पालन करती हूं, और ये मेरे गुरु ने। बोले तुम्हारा गुरु कौन है, तुमको ये विद्या दी किसने। बोले महाराज हमारे नगर में एक बाजार है, वहां पर उस दुकान करते हैं। बोले ठीक, उन्होंने सोचा शायद गुरु बताएगी कोई बहुत बड़ा आश्रम है और वहां पर जाओ आप, उस आश्रम में हमारे गुरुजी निवास करते हैं। लेकिन जब उसने कहा कि बाजार में हमारा गुरु दुकान चलाता है, क्यों भाई हमारे गुरुजी क्या करते हैं, दुकान चलाते हैं हमारा, तत्व महात्मा और घबरा गया। बोले कमाल की बात, उसकी भूख ही गायब हो गई। बोले जब इसकी ये हालत है तो गुरु कैसा होगा और गुरु दुकान चलाता है, वो तो कमाल की बात है भाई। तो जब वो महाराज वहां पर पहुंचा तो देखा वो दुकान किसकी है, बोले मांस विक्रेता की। क्या बेच रहा है, मांस बेच रहा है महाराज। और जो है वो एक तरफ शालिग्राम रखे हुए हैं और दूसरी तरफ मांस को तोलता जाता देता जाता। बोले महाराज जैसे ही वो महात्मा उसकी ओर देखते थे, पूछूं कि ना पूछूं कि इसी सही पता सही है या गलत है, क्यों भाई सोच रहे थे खड़े होके महात्मा, किससे पूछूं कि तुम्हारे पास ही वो फलानी स्त्री है, उसने मुझे भेजा आप ही हो। इससे पहले कि वो पूछते, वो महाराज जो कसाई था उसने कहा आओ महात्मा जी आपको फलाने ने भेजा होगा। बोले हैं, तुम उसके भी बाप हो, बेच रहे हो मांस, तुमको कैसे पता चला उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है। बोले महाराज आप भ्रमित हैं, आपने जंगल में बैठकर थोड़ा सा तप कर लिया, आप सोच रहे हैं आप दुनिया में क्या हो गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए, और यही आपका सर्वथा भ्रम है। हम लोग केवल जो है अपना कर्तव्य पालन करते हुए यथा योग्य जो परमेश्वर ने स्थिति हमको दी है, हमको कसाई के घर में पैदा कर दिया, हम कसाई के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, उस स्त्री को भगवान ने एक साधारण गृहस्थ धर्म दिया, वो अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर रही है, और इतना करते हुए हम परमेश्वर को निरंतर याद करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे तराजू में तासालिक ग्राम रखे हुए हैं, मेरी दृष्टि सालिक ग्राम से, लेने वाला भी देने वाला भी मांस भी जो कुछ भी है वो कौन है, शालिग्राम है, इसलिए कोई एक किलो मांगता है तो भी वही शालिग्राम, और कोई जो है महाराज दस किलो मांगता तो भी शालिग्राम। मेरी दृष्टि उस परमेश्वर से रहित नहीं होती है, ये जो है समझने योग्य वस्तु है। इसलिए महाराज श्री आप भ्रमित ना हो, क्योंकि आपने तपस्या तो बहुत गहन की, लेकिन जो चीज समझनी चाहिए थी, परमेश्वर की जो लीला समझनी चाहिए थी, वो आपके समझ में नहीं आई। समझना चाहिए था आपको परमेश्वर की लीला, लेकिन आप अपने आप को स्वयं मान बैठे कि मैं सिद्ध हो गया, ये मैं ही आपको खा रहा है महाराज। इसलिए आपको ये सब आश्चर्य लग रहा है कि एक साधारण सी स्त्री को कैसे पता चला, एक साधारण से कसाई को ये सब कैसे पता चला। इसलिए हमारे यहां तामस तप बड़ी बड़ी सिद्धियां की महाराज मेघनाद ने की है, और साधारण की तो बात क्या की जाए। स्वयं हनुमान जी को बांधा गया, भगवान श्री राम को बांधा गया, लक्ष्मण जी को बांधा गया, तो साधारण की तो बिसाती नहीं टिकती इन सिद्धियों के आगे। अगर ऐसी सिद्धियां आपके सामने आ जाएं तो क्या आपकी स्थिति क्या होगी, जरा विचार करके देखिए थोड़ी देर के लिए महाराज, है ना। इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है इन सिद्धियों के जाल से बाहर निकलना। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि परमात्मा से रहित होने के कारण, परमार्थ ज्ञान से रहित होने के कारण ये तामसी वृत्ति है। ये केवल आपको सिद्धि देकर, जैसे हमारे यहां एक और दूसरा उदाहरण शास्त्र में दिया जाता है कि एक शिष्य जो है गुरु के पास पहुंचा, बोले महाराज कुछ सिद्धियां सीखना चाहता हूं, कुछ है आपके पास। तो गुरु ने साफ शब्दों में कहा, बेटा मेरे पास राम नाम के अलावा कोई सिद्धि नहीं है। बोले फिर आप हमारे लिए बेकार हैं, है ना, क्योंकि मैं तो सिद्धि प्राप्त करके जगत में अपना नाम करना चाहता हूं। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जंगल में जाकर महाराज घनघोर 20 वर्षों तक तप किया नदी के किनारे, और तप करने के बाद जो है वो नदी के ऊपर से चलता हुआ चला गया उस पार। वाह, मैंने नदी के ऊपर चलना सीख लिया, इतना तप कर डाला महाराज है। और जैसे ही वो नदी पार किया, उसके पीछे पीछे भीड़ चलने लगी, महाराज सिद्ध महापुरुष आ गए, सिद्ध महापुरुष आ गए। बोले वाह, पूरी भीड़ लेके अपने गुरुदेव जिसको उसने गुरु बनाया था उनके समक्ष पहुंचा, चलो गुरु जी को अपनी सिद्धि दिखाएं, है ना। बोले महाराज मैं आपके पास आया था, आपको याद है। बोले हाँ याद है भाई, तुम मेरे पास आए थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैंने अपने बल से देखिए क्या सीखा। बोले क्या सीखा भाई, और भीड़ के सामने देखते ही देखते उनका वो शिष्य चलते हुए नदी को क्या कर गया, पार कर गया महाराज, और फिर वापस लौट आया जल के ऊपर चलता हुआ। बोले देखा महाराज, मैंने अपने बल से ये सिद्धि प्राप्त की है। महात्मा मुस्कुरा दिए, मुस्कुराने लगे महात्मा। बोले ये चार आने का काम किया तुमने 20 साल में, कितने का। उसने एक नाव वाले को बुलाया और उसको चार आने दिए और बोले बेटा मुझे नदी के पार करा दो। नाव वाले नदी पार करा दी महाराज। बोले समझ में आई बात की नहीं, अगर यही 20 साल तुम राम नाम का सहारा लेते तो ये नदी नहीं भाव सागर पार हो जाते। क्या हो जाते, राम नाम के सहारे हम भवसागर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप निष्काम भाव से भगवान के, भगवान ने गीता में कहा ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वही परमेश्वर का नाम आपको तरह तरह की सिद्धियां प्रदान करता है, जगत की सिद्धियां, नश्वर सिद्धियां, जो आज हैं वो कल नहीं हैं, बहुत विशाल विशाल, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। और तामस सिद्धियां हैं, बहुत सारी तामस सिद्धियां होती हैं जिनका आपके सामने प्रदर्शन हो जाए तो आप घबरा जाओगे। हमारे पास एक लड़का है हरियाणा में महाराज, है ना, अब तो उसने छोड़ दिया, उसको बहुत से नाथ लोग ले गए और उसको तरह तरह की शमशान की सिद्धियां कराई, और वो आपके सामने जो है ना, ये पेपर जो आप लोग पढ़ते हैं, दैनिक समाचार जो आपका रोज आता है ना, वो आपके सामने ऐसे उसका चोंगा बनाएगा, उसमें पानी डालेगा, दूध डालेगा, चाय की पत्ती डालेगा और गैस में आपको चाय बना के पिला देगा। क्यों भाई, पन्नी जिसमें आप थैली में सामान लेके आते हैं उसमें चाय की पत्ती दूध डाल के या तेल डाल के पकौड़े बना के खिला देगा आपको गैस के ऊपर। जिसमें आप कैरी बैग जो आपका पन्नी का बना हुआ प्लास्टिक का, उसको अगर आप गैस के ऊपर अगर दूर से भी दिखा दो तो क्या हो जाता है, जल के तुरंत गोली बन जाती है। लेकिन उसी पन्नी में वो क्या बना देता है, सुंदर सुंदर पकौड़े भजिया बना के खिलाएगा आपको। बोलो, ऐसी सिद्धि अगर दिखाई दे जाए तो बोलो समाज उसके पीछे भीड़ लगा के भागेगा कि नहीं भागेगा। कमाल है महाराज, गद्य है। सारे विज्ञान को ही आपने क्या कर दिया, फेल कर दिया। लेकिन ये सब केवल दिखावा मात्र है। आत्मज्ञान के आगे इन सब चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों को प्रकट करने वाली कौन है, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना आत्म तत्व ही तो ये सारा आडंबर प्रकट करने वाला है। समृतम अस्मि, त्रिशंकु ऋषि कहते हैं मैं अमृत कुंड स्वयं हूं, मुझे किसी अमृत की आवश्यकता नहीं है। तो तामस सिद्धियां वही कष्ट तप है सारी। देखो उसने कितनी जो है शमशान भूमि में जाकर दुनिया भर की रात्रि गुजारी होंगी, ना जाने कितना अपने शरीर को भूखा प्यासा रखकर सताया होगा हैं, और इतना सब करने के बाद उसको जो है ये सिद्धियां प्राप्त हुई। लेकिन ये सिद्धियां क्या होंगी, शरीर के संग क्या हो जाएंगी, कुछ तो शरीर के संग ही समाप्त, शरीर रहते ही समाप्त हो जाएंगी और बाकी फिर शरीर समाप्त होते ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वही सिद्धियां तुलसीदास जी के पीछे पीछे घूम रही हैं महाराज, वो भूत प्रेत पीछे घूम रहे हैं भगवान के दर्शन कराने के लिए। देखो ये सात्विकता का प्रमाण है। जब हमारी साधना सात्विक होगी, जब हमारा शारीरिक तप, मानसिक तप और जो है वाणी का तप पूर्णतया दूसरे के भले के लिए होगा, हमको चाहे भले ही कितना कष्ट हो जाए। और इसके लिए हमारे यहां राजा शिवी के उदाहरण आते हैं, राजा हरिश्चंद के उदाहरण आते हैं, स्वयं भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के उदाहरण आते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को सुखों से हटा करके पूर्णतया मारा, जिसको कहते हैं ना सुविधा से असुविधा की ओर ले जाकर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं, भगवान खाली अर्जुन को गीता नहीं पढ़ाते थे, खुद भी महाराज उस बचपन में भयंकर गर्मी में छोटे छोटे गायों और बछड़ों को हैं क्या करते थे, 5 वर्ष की उम्र में जंगल में उन बच्चों के संग भूखे प्यासे रहकर भगवान भी गायों को क्या करते थे, चराते थे महाराज। ये तप कहलाता है, ये सात्विक तप कहलाता है। दूसरे का पेट भरने के लिए खुद को भूखा रखना, ये सात्विक तप है हमारा, है ना। भगवान ने कोई आकर के सुंदर सुंदर कोमल कोमल बिस्तरों पे आराम नहीं किया, ध्यान देना। और यही स्थिति भगवान राम की है कि नहीं है, पहले विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद फिर जो है पूरा जीवन ही लगभग जो है वनवास में भगवान का गुजर गया। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है, क्योंकि सात्विक दैवी संपदा का एक गुण है तप, और साधारण नहीं है। तस्सै तपो स्वयं श्रुति ने, केन श्रुति ने जो है इस चीज को स्वयं गाया है, तस्सै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। आधार है महाराज ये 3 चीजें, तप के बगैर, तप आधार सब सृष्टि भवानी। अगर आप तपस्या नहीं करते, अगर आप प्रातःकाल जल्दी नहीं उठते और प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने मन को पूर्ण लगाम लगाकर आप प्रेमपुरी किसी सत्संग भवन की ओर नहीं मोड़ते, तो क्या आप प्रातःकाल सुबह यहां पर आ सकते थे। तो तप किया कि नहीं किया आपने, पहले अपने आप को जल्दी उठाया, फिर अपने मन को पूर्णतया तैयार किया कि नहीं मुझे सत्संग सुनने जाना ही जाना है। तो महाराज ये सात्विक तप कहलाता है। जब हम अपने आप को निष्काम भाव से पूर्णतया इन कार्यों के लिए तैयार रखते हैं तो ये सात्विक तप कहलाते हैं। इसके लिए विशेष प्रकार की साधना नहीं करनी पड़ती। इसलिए जिस महात्मा के देखने मात्र से चिड़िया जल करके क्या हो गई, राख हो गई, लेकिन उसी महात्मा के क्रोधान्वित होने पर भी उस स्त्री का कुछ नहीं हुआ, नहीं तो उसको भी जल के क्या हो जाना चाहिए था, राख हो जाना चाहिए था। यानी सात्विकता का जो महत्व है वो तामसी आडंबर देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सात्विकता के सामने उसका कोई स्थान नहीं है, है ना। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट भाव में समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जो है क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कुछ का कुछ ही रास्ता अपना लेते हैं। तो बिल्कुल साधारण सा रास्ता है कि जो आपका जीवन जैसा भी, अमीर गरीब, अगर आपको गरीबी दी है तो गरीबी का आनंद लो, अगर आपको अमीरी दी है तो अमीरी का आनंद लो, लेकिन अपने कर्तव्य पालन को यदि आप करते हुए जितने ज्यादा जीवों को सुखी रख सकते हैं या प्रसन्न कर सकते हैं अपनी भगवान के दिए हुए प्रसाद के द्वारा, जो भी आपको प्रसाद स्वरूप अमीरी गरीबी जो भी आपको मिली है उसके अनुसार यदि आप बहुत सारे जीवों को प्रसन्न कर सकते हैं तो ये सात्विक साधना तप कहलाता है। और जब आप जो है अपने किए हुए शुभ कार्यों के बदले में जो है कुछ मांगने लगते हैं, कुछ इच्छा करने लगते हैं कि प्रभु अगर मेरा ये कार्य हो गया तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, फिर हर साल आपके दर्शन करने आऊंगा। ऐसी भीड़ आप देखते हैं कि नहीं मंदिरों में, देखो शिवरात्रि के दिन आपके सामने ही भगवान बाबुलनाथ हैं कि नहीं मौजूद, और शिवरात्रि के दिन आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा होगा कितनी लंबी लाइन लगती है मंदिर के द्वार से लेके हमारा पीछे तक रात से ही लाइन लग जाती है। तो वास्तविकता में इस प्रकार के जो भगवान के प्रेमी, जिनको भगवान केवल कितने दिन याद आता है, एक दिन ही भोलेनाथ याद आते हैं, और वो भी किस लिए कि शिवरात्रि के दिन हमने दर्शन किए हैं तो भगवान हमारी इच्छा क्या कर दें, पूरी कर दें, हमारे दुख दूर कर दें, हमारा फलाना काम हो जाए। इसलिए वो रात के 2:30 बजे से ही आके क्या लग जाता है, लाइन में लग जाता है, और फिर उसके बाद अहंकार स्वरूप वाणी से दूसरों को बताता है जाके घर में कि मैंने 4 बजे सुबह भगवान के क्या किए, दर्शन किए। अच्छा बाकी दिन बेचारे जब खाली बैठे होते हैं बाबुलनाथ भगवान है? जब बिल्कुल खाली बैठे होते हैं तब उनसे कोई मिलने, बोले ना आज शिवरात्रि है ना सोमवार है इसलिए आज हम जाएंगे नहीं, तो उस दिन वहां पर इसका मतलब भोलेनाथ नहीं है। ये देखो ये दिग्भ्रमित लोगों की स्थिति है। तो जो ज्ञानवान है वो महाराज उस समय मंदिर में जाएगा जब भगवान भोलेनाथ बिल्कुल क्या हो, खाली हो, और फिर हम और भगवान दोनों बैठकर महाराज आनंद से उनकी भक्ति करो, पूजा करो, भगवान से वार्तालाप करो, कुछ अपनी कहो और कुछ भगवान की सुनो। क्यों भाई, ऐसा काम बढ़िया है कि नहीं है? लेकिन महाराज वो जाएगा उसी दिन जिस दिन इतनी लंबी लाइन लगी होगी, और वो फिर जल कहां से, बोले पीछे से ही भगवान के ऊपर क्या कर दिया है, जल का गिलास फेंक के मारा और जल गया कहीं, गिलास गया कहीं, उसके बाद 4 फूल तैयार वो भी फेंके भोलेनाथ की जय। फूल कहीं जा रहे हैं, जल कहीं जा रहा है, बोले 4 बजे सुबह किसके दर्शन किए, भगवान के। तुम किसी के घर जाओ और घर में घुसते ही वो गिलास फेंक के मारे, बोले भोलेनाथ की। क्यों भाई, कितने बूंद पानी तुम्हारे मुंह में जाएगा, बोले पी जाओ महाराज ये हमारा अर्पित किया हुआ जल है, कैसा लगेगा आपको है? यही तो करते हैं भगवान के संग, भीड़ में जाकर महाराज दर्शन हो गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं पागलों की तरह से, उल्टा सीधा जो मर्जी आया जहां पर फेंक दिया बस भगवान के ऊपर सब उसी दिन चढ़ाना। तो ये मूर्खतापूर्ण तप, रात के 2:00 बजे से 2:30 बजे से जाग के महाराज लोग लाइन में लग जाते हैं और अपने आप को तपस्वी मान लेते हैं कि आज हमने क्या किया, तप किया, हमारा तपस्या की। लेकिन एक बहुत साधारण सा तप है, घर में बैठकर शांति से जो है भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण करो, सत्शास्त्रों को माध्यम बना के उनका चिंतन करो बड़े शांत भाव से, ये सात्विक तप कहलाता है। और उसके संग संग जो तुम्हारा कर्तव्य तुमको दिया गया है उसका पालन करने में पीछे मत हटो, क्योंकि उससे अगर पीछे हट गए तो फिर ये सात्विक तप भी किसी काम का, ये भी बेकार हो जाता है ना। इसीलिए हमारे सत्शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सब निरर्थक हो जाता है जब हम अपने कर्तव्य से क्या हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। तो उससे भी बड़ा जो कार्य है वो क्या है कि आप अपने कर्तव्य को बिल्कुल भी जो आपकी ड्यूटी भगवान ने लगाई है, क्योंकि भगवान की लगाई हुई ड्यूटी है, ये भगवान का दिया हुआ कार्य है, जो आपको जीवन मिला है उसको पूर्णतया निभाने की क्या करें। अरे भाई, भगवान को भी नाव से पार कराने वाला कौन था? केवट था कि नहीं था? नहीं तो भगवान कहते केवट तुम अपनी नाव दे दो, मैं हम खुद ही चला के चले जाएंगे। हैं, क्यों भाई? अगर भगवान के अंदर अहंकार होता तो भगवान कहते महाराज कि हमको नाव दे दो, हम दोनों भाई अपने आप निकल जाएंगे पार। ऐसा नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है, भगवान ने उसकी ड्यूटी को, उसके कार्य को स्वीकार किया। केवट के कार्य को भगवान ने क्या किया? स्वीकार किया। और केवट ने अपने कर्तव्य को जब निर्वाह किया तो इसके बदले में केवट को मुक्ति मिली कि नहीं मिली? निषाद राज को भगवान मिले कि नहीं मिले? ये शुद्ध अंतःकरण की पहचान है। बिना पढ़े लिखे केवट को राम मिल गए और हम आप पढ़े लिखे घूम रहे हैं। क्यों भाई? दुनिया भर का शास्त्र ज्ञान होने के बाद भी अगर तुम्हारे सामने से परमेश्वर आके निकल जाए तो क्या पहचान लोगे? कैसे पहचाना केवट ने? क्योंकि केवट का अंतःकरण शुद्ध था। भगवान को भूमि शयन करते हुए देखा तो महाराज केवट की आंखों में आंसू आ गए। क्या आपने विचार किया कभी? इतना दुनिया भर का हमने वेदांत पढ़ डाला, क्या आज तक कभी आपके नेत्रों से किसी के दूसरे के लिए आंसू निकले? है ही नहीं, भाव ही नहीं है प्रेम का, भगवान का भाव ही हमारे अंदर नहीं है। उड़िया बाबा का आपको उदाहरण बताते हैं महाराज, है हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी गुरुदेव मानते थे, उनको ज्ञान गुरु मानते थे उड़िया बाबा का। हरिहर आश्रम था महाराज वृंदावन में, रोज शाम को आरती में वहां जाते थे। कौन? उड़िया बाबा जी महाराज हैं। और इतने विद्वान, और इतने विद्वान होने के बाद भी कहीं वो सत्संग करने या इस तरीके से कहीं प्रवचन करने नहीं जाते थे, स्वयं अपने श्लोकों की रचना वो करते थे महाराज। इतने विद्वान संत थे और उतने ही निर्मल। जरा देखिए उनके जीवन का उदाहरण आपको बताते हैं। आरती में गए हुए थे, जितनी देर आरती चलती थी वो फिर वहां से हिलते नहीं थे। एक दिन जो है उन्हीं के बगल में आकर कुछ भूखे लोग, दो एक लोग बिल्कुल भयंकर भूख से, इतनी भूखे थे कि वह कांप रहे थे। जब देखा इन्होंने भूखे तो बीच में उन्होंने, जो कभी आरती छोड़ते नहीं थे, आरती छोड़ करके अपने आश्रम में ले गए और जो उनके पास था वो उनके सामने रख दिया। बोले तुम लोग भोजन करो। और जितनी देर वो लोग भोजन करते रहे उड़िया बाबा के नेत्रों से आंसू गिरते रहे, उतनी देर उनको रोते, हे प्रभु तुम इस रूप में मेरे सामने आए। ये महापुरुष है महाराज, आत्मज्ञानी महापुरुषों की स्थिति है। ये कर्तव्य बोध कहलाता है, ये कर्तव्य पालन कहलाता है। अगर वहां पर अहंकारी व्यक्ति होता तो लात मार के बाहर कर देता, हो निकलो बाहर, जाओ मांग के खाओ। करता कि नहीं करता? करते हो कि नहीं करते हो? तो महाराज महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है, जो भगवान का जीवन चरित्र है, जो केवट की अवस्था है, ये निर्मल अंतःकरण जो होते हैं उनकी क्या स्थितियां हैं। भगवान कहीं सोने के किरीट मुकुट कुंडल लगा के थोड़ी तुम्हारे घर आएगा, किसी भी रूप में आएगा। ये कहने के लिए थोड़ी कि हर रूप में भगवान है, उसका ना कोई रूप है ना रंग है, जिस रूप में चाहे उस रूप में आ सकता है। भूखे के रूप में आए, प्यासे के रूप में आए, ना जाने किस रूप में आए महाराज। तो केवट ने राम को कैसे पहचान लिया? क्योंकि क्या भगवान के सींग लगे हुए थे? नहीं, ये था कर्तव्य बोध, जो हमारे यहां सात्विक तप कहलाता है महाराज। गीता का जो तप है जिसको समझना अति आवश्यक है ना, क्योंकि तप के बगैर तो महाराज कुछ भी मिलने वाला। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाई तप अस जी जानी। बिना तपस्या के तो भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि भी नहीं बनी। 1000 दिव्य वर्षों तक उनको तप करना पड़ा, लेकिन आत्मज्ञान के पथ के लिए ये तप है महाराज। बीच में आरती छोड़कर उन भूखे लोगों को जो भी उनके पास था उसको खिलाकर पूर्णतया ऐसा उनको लग रहा था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भोग लगा रहे हैं। ये महापुरुषों का क्या है? ये साक्षात अनुभव है। कहीं खोजना नहीं पड़ता भगवान को कि भगवान आएंगे विशेष रूप से मेरे से पूछेंगे, हाँ भाई तुम मेरे भक्त हो कुछ चाहिए? हैं, ऐसा नहीं होने वाला कभी। तुमको स्वयं ढूंढना पड़ेगा, तुमको स्वयं खोजना पड़ेगा, नहीं तो तामसी तप हो जाएगा। ये सब पढ़ा लिखा ये सब क्या बन जाता है? अरे अगर मैं अपने आप को विद्वान मान लूं, अपने आप को 30 मार्का मान लूं और मैं आपको मूर्ख मान लूं और फिर आपको पढ़ाने लगूं तो ये मेरी मूर्खता है कि आपकी? अरे भाई मेरी मूर्खता हुई कि नहीं हुई? वास्तविकता में हम केवल ड्यूटी कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं। मुझे ये पढ़ाने का उसने जिम्मा सौंपा है तो महाराज हम आपके सामने दो चार टूटे फूटे शब्द बोल देते हैं, आपको तरह तरह के कार व्यापार कार दे रखे हैं वो आप कर रहे हो। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि परमेश्वर सबके लिए है और सबके लिए बराबर है, किसी के लिए बड़ा छोटा नहीं है कि हमारे लिए ईश्वर बहुत नजदीक है और आपके लिए दूर है। किसी के लिए ना दूर है ना किसी के लिए नजदीक है, वो तुम्हारे अपने अंतःकरण में ही विराजमान है और तुम्हारा अपना आप होकर बैठा हुआ है। जिस दिन तुम निर्मल हो जाओगे उसी दिन वो झिलमिलाने लगेगा तुम्हारा अपना आप, और तुम भी त्रिशंकु ऋषि की तरह कहना प्रारंभ कर दोगे। क्या कहोगे? अमृतोचितः, मैं बिल्कुल अमृत से बिल्कुल भरा हुआ लबालब कुंड मैं ही हूं, कोई दूसरा अमृत मुझे नहीं चाहिए, पूर्णतया सराबोर अमृत स्वरूप मेरा ही स्वरूप है ये अमृत, मुझे किसी अन्य अमृत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको कर्तव्य पालन रूप जो सात्विक तप है, तीनों तप, शारीरिक तप, उसके बाद मानसिक तप और उसके वाणी का तप, और उसके बाद मनो में वाची प्रतिष्ठितम, श्रुति कहती कि नहीं मेरा मन मेरी वाणी में क्या हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, और मेरी वाणी कहां प्रतिष्ठित हो जाए, मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाए, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, मन वाणी में और वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी मन वाणी से मैं क्या हो जाऊं, एक हो जाऊं, यानी मैं जो मैं सोचूं वही मैं करूं। और वास्तविकता में होता यह है कि हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और दिखाते कुछ, और इसका परिणाम ये होता है कि बरसों बरस की आध्यात्मिक यात्रा के पश्चात भी हमको कुछ हाथ नहीं लगता, और देखने में हमारी स्थिति क्या हो जाती है कि हम एकाएक, सबसे बड़ी दयनीय स्थिति तो हमारी तब आती है महाराज जब हम किसी नास्तिक की भौतिक उन्नति को देखकर प्रभावित होते हैं। ध्यान देना, बहुत भयंकर रूप है ये, जब किसी नास्तिक व्यक्ति को देखकर। रामकृष्ण परमहंस महाराज विवेकानंद जी के गुरु है ना, उनसे एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने जीवन भर साधना की, किसी से कुछ लिया नहीं, पैसा आपने छुआ नहीं, भूखे प्यासे रहकर आपने माता भगवती की आराधना की, भगवान ने आपको क्या दिया, कैंसर, गले में कैंसर हो गया, भोजन करना मुश्किल हो गया महाराज। बोले आपको गिफ्ट में क्या मिला, माता ने क्या दिया, कैंसर, और आप प्रार्थना दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते हो, अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हो, माता से बोलो मेरा कैंसर ठीक करे, क्यों भाई, ये साधारण बुद्धि की सोच ही है। तो हंसने लगे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा एक बात बताओ, एक बनर्जी बाबू थे और उनकी उम्र थी लगभग जो है 70 वर्ष, अपने हाथ से रोज भोजन बना करके वैश्या के यहां ले जाते थे। रामकृष्ण परमहंस महाराज बोलते हैं उस भक्त से, बनर्जी बाबू रोज वैश्या के लिए अपने हाथ से भोजन बना के ले जाते हैं, उनका भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनके शरीर में कोई रोग नहीं है, एक भी रोग नहीं है, नित्य वैश्यावृत्ति ही उनका स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव है कि अपने हाथ से भोजन बना के उसके यहां ले जाते हैं। तो हंस के पूछते हैं उससे, क्या करूं, मैं भी यही शुरू कर दूं क्या, क्यों भाई, बहुत विकट स्थिति है, इतना आसान नहीं है संसार से पार होना। जब अध्यात्म में चलने वाला नास्तिक पुरुष को भौतिक दृष्टि से वृद्धि प्राप्त करते देखता है तो अपने ऊपर शक करने लगता है कि मेरा रास्ता सही है या गलत है। बोले ये तो इतना निकम्मा आदमी, और जब देखो तो इसको हमेशा फायदा ही होता है, इसको कभी नुकसान। जब आप ऐसा तराजू अपने जीवन में टांग लेंगे तो आपका, इसका मतलब है कि आपका और अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है, आपको हाथी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, हाथी बन जाओ महाराज, जिस प्रकार से हाथी अपनी मस्ती में चलता चला जाता है और सड़क के छोटे छोटे कुत्ते उसके ऊपर क्या करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, उसकी वो परवाह नहीं करता। इसी प्रकार का जब सिद्धांत, सात्विक सिद्धांत हमारे अपने धर्म पालन में हमको चाहे जितने भी कष्ट आए, मुझे दूसरे की तरफ देखना नहीं है, और जब भी तुम दूसरों की तरफ देखोगे तो हमेशा दोनों तरफ से जाओगे, संसार से तो गए ही और कहां से चले गए, अध्यात्म में भी फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जैसी जिस प्रकार की अवस्था आपको प्राप्त हुई है, आप स्वस्थ हैं तो, बीमार हैं तो, अमीर हैं तो, गरीब हैं तो, आपका मुख्य कर्तव्य परमेश्वर का भजन है। आपका कर्तव्य दूसरे का निर्धारण करना नहीं है कि ये अमीर क्यों है, ये गरीब क्यों है, ये स्वस्थ क्यों है, ये अस्वस्थ क्यों है। अगर आप इस निर्णयों से अध्यात्म का तराजू लेकर बैठेंगे तो कभी भी आध्यात्मिक जगत में आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अध्यात्म कहता है एड़ी से चोटी तक रोग लगे हों, कितने एड़ी से चोटी तक किसी के रोग लगे हों और उसका स्मरण निरंतर परमेश्वर में स्थित हो, वो विजेता है। और एक व्यक्ति एक भी रोग नहीं है, 100 साल की उम्र है, खूब खाता है और उसके बाद 100 साल की उम्र में महाराज शादी करने की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है ना, तो उसका जीवन क्या कहलाता है, है? उसका जीवन किसी काम का, क्योंकि वो समाज के ऊपर क्या है, बोझ है। और जिसके एड़ी से चोटी तक बीमारियां लगी हों, लेकिन अगर वो सब तरफ से अपने आप को हटाकर, जैसे भगवान ने कच्छप का उदाहरण दिया है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से आत्मज्ञानी परमेश्वर का भक्त अपने आप को सब ओर से समेटकर भगवान में लगा देता है। वो ये नहीं देखता, ना भगवान से शिकायत करता कि प्रभु आपने मुझे बीमार क्यों बनाया, सामने वाले को स्वस्थ क्यों बनाया, उसको पैसा क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। ये कंप्लेंट की लिस्ट आपकी कभी खत्म होने वाली नहीं, और भगवान आपकी कंप्लेंट लिस्ट को कभी अपने टेबल पे रखने वाले, अगर आप ये सोचो कि आपकी ये कंप्लेंट की लिस्ट वहां टेबल पे जाएगी, वहां कोई टेबल है ही नहीं, तो आपकी चिट्ठी वहां कहां जाएगी महाराज। तो भ्रमित ना हो, बिल्कुल सावधानी से समझने की चेष्टा करें, तप क्या है, यही तप है। अगर दूसरे की तरफ देखने का स्वभाव है, समझ जाओ कि हमको कुछ भी मिलने वाला ना मिला है और ना मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अपने मन को स्वयं समझाएं, ये स्वाध्याय कहलाता है। जब हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक सत्ता की ओर ले जाते हैं, तो ये मन का तप कहलाता है, ये बुद्धि का तप कहलाता है महाराज। और परमात्मा के संग जुड़ी हुई बुद्धि परम सात्विक हो जाती है, परम जो है ज्ञान स्वरूप, जिसको कहते हैं ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती, दैदीप्यमान हो जाती, ऐसा हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जलता है। तो आगे का जो दैवी संपदा का गुण है उसकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सायंकालीन पुनः आपको याद दिला दें, सुबह द्वापर युग और सायंकाल त्रेता युग हमारा चल रहा है। भगवान श्री राम के माध्यम से भी आप इसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों रूपों में, है ना। तो शाम को भी आप लोग जो है, जब बेचारा प्रेमपुरी ट्रस्ट जो है इतना कार्य कर रहा है, आपके लिए बिजली खर्च कर रहा है, हैं, आपके लिए एसी की व्यवस्था कर रहा है, तो सुनने में क्या जाता है। तो आप लोग सब लोग आमंत्रित हैं दैया जी की गीता चिंतन माला में भगवान श्री राम के माध्यम से। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।